अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। आवाज आ रही है? आवाज क्यों नहीं आ रही? हरे कृष्णा सबसे पहले आप सबका बहुत धन्यवाद है। भारतवर्ष में समय पर आना एक चमत्कार है, है ना? ऐसा मैंने सुना था मेरे बचपन में कि सबके जीन्स के अंदर लिखा होता है 20 मिनट्स लेट। सो इट इज़ सो डीपली रूटेड। बट फिर भी आपने वो संस्कृति को छेद देकर समय से पहले आप यहाँ पर आके बैठे, बहुत धन्यवाद आपका। और दूसरी बात धन्यवाद की कि जिस उत्साह से आप लोग सब मिलकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे थे, वो भी बहुत अद्भुत है। क्योंकि आमतौर पर जब हम प्रोग्राम में जाते हैं तो उसमें बहुत लोग नए होते हैं और कुछ लोग पहले से भक्त बने हुए होते हैं, तो जो पहले से ही भक्त बने वो वही खाली बोलते हैं, बाकी सब लोग खाली ऐसे रहते हैं। लेकिन आप सब लोग इतने उत्साह से कीर्तन कर रहे हैं, ये भी एक असाधारण वस्तु है। क्योंकि कलयुग में भगवान के प्रति आसक्ति प्रेम लगाव होना बहुत दुर्लभ है, और जिनको वो लगाव आसक्ति है वो भगवान की कृपा ही समझते हैं। भगवान की कृपा से ही ये सब हो सकता है, अन्यथा बहुत कठिन है। और तीसरी बात है कि हमारी ललिता माता जी का आज बर्थडे है, तो उनको हम आप सब की ओर से जन्मदिन की हार्दिक बधाई देते हैं। हरे कृष्णा। ये जो सारा प्रयास जो है इनका ये है, क्योंकि हम लोग जैसे तो कथा करने वाले तो आते जाते रहते हैं, लेकिन लोगों को इकट्ठा करना चाहिए ना। नहीं तो खाली कमरे में आकर हम बोल सकते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लोग होंगे तो आनंद आता है। हरे कृष्णा। तो संक्षेप में, हम सब लोग अभी मनुष्य जीवन के सर्वोत्तम भाग्यशाली दिव्य कालावधि में हैं, कार्तिक। वैसे टेक्निकली वो कार्तिक नहीं है, टेक्निकली अश्विन पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा है। पूर्णिमा से पूर्णिमा से पूर्णिमा, उसको कहते हैं पूर्णिमास्यांत कालगणना, दी कालगणना विच इज़ बेस्ड ऑन पूर्णिमा टू पूर्णिमा। और एक कालगणना होती है अमावास्यांत कालगणना, जो प्रतिपदा से अमावास्या तक चलती है, जो हमारे महाराष्ट्र में प्रचलित है, लेकिन यूपी और बिहार उत्तर प्रदेश में उधर पूर्णिमास्यांत कालावधि कालगणना होती है। तो चतुर्मास्य का जो पीरियड है वो पूर्णिमा से पूर्णिमा ही होता है। आषाढ़ पूर्णिमा से श्रावण पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा, भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन पूर्णिमा, जो कल का दिन था, परसों का, और उसके बाद में कार्तिक पूर्णिमा को ये चतुर्मास जो है वो समाप्त हो जाता है। इसमें जो आखिरी मंथ है ये, जिसमें हम ये हम तीसरे दिन में हैं, उसको कहते हैं दामोदर मंथ। वैष्णव कैलेंडर में भगवान के जो नाम है ना, वो केशव, माधव, गोविंद, वामन, ऐसे नाम हैं। उसमें इस महीने का नाम दामोदर है। और दामोदर नाम का अर्थ क्या है? बहुत सिंपल है, दाम और उदर। दाम का मतलब है दोरी, उदर का मतलब है पेट। इस महीने में यशोदा मैया ने श्री कृष्ण को पेट से दोरी से बांधा था, इसलिए उसको इतनी महत्वपूर्ण लीला है वो, इसलिए उसका पूरा महीने का नाम ही दामोदर रखा गया है। वैसे तो महीने के बीच में ये लीला हुई है, आज के बिल्कुल अभी 13 तारीख को आएगा, यानी 15वें दिन, इस महीने के 15वें दिन में वो लीला हुई है, मतलब बीच में हुई है, फिर भी पूरे महीने का नाम दामोदर पर दिया है। तो ये दामोदर बाल कृष्ण का महीना है। और एक अंडरस्टैंडिंग होता है कि हर महीने के एक अधिष्ठात्री देवता होती है, कंट्रोलिंग गॉड और गॉडेस। तो इस महीने की विशेषता ये है कि इस महीने की कंट्रोलिंग गॉडेस जो है वो स्वयं राधा रानी है, जो यहाँ पर पलने में झूल रही है। और राधा रानी का होना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि श्री कृष्ण जो है ना, वो भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्मा माम शांति मुच्यते। वो सारे जगत के निर्माता, नियंत्रक, भोक्ता, प्रोप्राइटर, सब कुछ वही है। कोई एक पत्ता भी उनकी इच्छा के बिना नहीं हिलता है, लेकिन उनको भी कंट्रोल करने वाली एक देवी है, इनका नाम है राधा रानी। उसको सर्वेश्वरी कहा गया है, जो सर्व ईश्वर की भी ईश्वरी है, और वो इनकी अधिष्ठात्री है इस महीने की। तो इस महीने में जो भी कोई व्रत करता है या जो भी कोई प्रण लेता है, भगवान का नाम लेता है, भगवान की कथा सुनता है, या पवित्र नदी में स्नान करता है, या शास्त्र की कथा सुनता है, भगवत कथा हरि कथा सुनता है, और सारे भी बहुत चीज़ें बता सकते हैं, श्लोकों का उद्धरण करता है, और कई प्रकार के भजन हैं, जैसे हम अभी गाएंगे दामोदर अष्टक, ऐसे बहुत सारे अष्टक हैं, इनका गायन करेंगे, ब्रह्म संहिता का गायन करेंगे, इनमें से किसी भी कार्य को करेंगे तो उसका फल कोई बाकी देवी देवता न देते हुए स्वयं राधा रानी आपको देती है। और जब राधा रानी कुछ देती है ना, तो कृष्ण भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। आपके घर में समझो किसी के पत्नी ने अगर किसी को उठा के कोई भेंट दे दी, तो पति कुछ बोल सकता है क्या? क्यों दिया तुमने? पत्नी ने दिया, फाइनल हो गया। और पति को कुछ देना है तो वो पत्नी को पूछता है, दे दूं क्या? दिस इज नॉर्मल, हाँ बाय द वे, कोई अबनॉर्मल नहीं है, सबके हमारे जीवन में हम इसका अनुभव करते हैं। हम कितना भी नियंत्रक होंगे, कितना भी हम धन अर्जन करते होंगे, हमारे घर में कितना भी हमारा अधिकार वैसे नाम से होगा, लेकिन वास्तविक अधिकार किसका होता है आप जानते हैं। तो भगवान के धाम में भी वही रूल है, वो रूल वहीं से यहाँ पर आया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि राधा रानी जब कोई वरदान देती है ना, तो वो केवल भक्ति का वरदान देती है। राधा रानी किसी को धन दौलत, कोई पदोन्नति, या कोई सौंदर्य, या कोई विद्या, या कोई यश कीर्ति, ऐसा वरदान नहीं देती है। क्यों नहीं देती है? क्योंकि ये वरदान सब नश्वर है। आज आपका पदोन्नति हो जाएगी, प्रमोशन हो जाएगा, कल वापस डिमोशन हो जाएगा। आज आपका हेल्थ मिलेगा तो कल वापस बीमार पड़ सकते हैं। आज कोई सुंदर है तो कल कुरूप हो सकता है। आज कोई धनी है तो कल शेयर मार्केट क्रैश हो गया तो सब लोग क्रैश हो जाते हैं। तो ऐसा वरदान राधा रानी देती है। राधा रानी ना प्रेम की मूर्ति है, उनका एक और नाम है भक्ति देवी। हमारे और आपके अंदर जो भी अणुमात्र भक्ति है वो सब राधा रानी की ओर से आती है, और वही सबको देती है। और जब वो किसी को भक्ति देती है, किसकी भक्ति देती है? कृष्ण की भक्ति देती है। तो कृष्ण भी उस व्यक्ति को नकार नहीं सकते हैं। कृष्ण कैन नॉट रिजेक्ट द पर्सन हु इज गिवन भक्ति बाय राधा रानी। और राधा रानी इस महीने में केवल भर भर के भर भर के भर भर के भक्ति देती है। एक हमारे ब्रज में ऐसे बताते हैं कि कृष्ण कृपा करते हैं, राधा रानी कृपा नहीं करती है, राधा कृपा बरसाती है। इसलिए उनका जो रहने का स्थान है उसका नाम है बरसाना। क्यों पड़ा है वो नाम? क्योंकि वहां कृपा हमेशा बरसती रहती है, देते नहीं, कोई कोई देते नहीं उसको, बरसती रहती है। कृष्ण के धाम में जहाँ नंदगांव वृंदावन जाएंगे तो वो कृपा देते हैं, लेकिन राधा रानी उसको बरसाती है। तो ऐसा ये वृंदावन धाम का रहस्य है। अभी आप वृंदावन धाम में जाएंगे ना, कोई कृष्ण को नहीं पुकारता वहां पर। आप द्वार द्वार जाइए, द्वारका जाइए, सब जय श्री कृष्णा ऐसा बोलते। वृंदावन में कोई जय श्री कृष्णा नहीं बोलते, सब राधे राधे बोलो, जय श्री राधे, बस यही बोलते हैं। लता पता डाली डाली पे भी राधा रानी का नाम गूंजा जाता है। हर पत्ता हर रज का कर्ण यानी धूल का कर्ण जो है वो भी राधा रानी का नाम उच्चारण करता है। और राधा रानी के नाम की एक महिमा है, और जब हम राधा कहते हैं ना राधा, तो रा उच्चारण करने से जन्म जन्मांतर के जो कष्ट हैं उसमें प्रधान कष्ट होता है गर्भवास, यानी माता के गर्भ में प्रवेश करके वहाँ पर रहना और बाद में डिलीवर होना, ये इसको कहते हैं गर्भवास। गर्भवास एक प्रधान कष्ट है जो बाकी सब कष्टों का मूल है। तो सारे कष्ट जो है वो रा का उच्चारण करते ही खत्म हो जाते। तो धा का उच्चारण करने के बाद क्या होता है, बचा क्या है आप बताइए? सब कुछ कष्ट समाप्त हो गए, कर्म संचित सब जमा किया, सब संचित समाप्त हो जाता है। तो फिर धा कहने से क्या होता है? धा कहने पर धावयति धावत्यै ससंभ्रमः। ससंभ्रम यानी एक होता है संभ्रम, एक होता है ससंभ्रम यानी बहुत ज्यादा संभ्रम, टू मच कंफ्यूज्ड, टू मच बिविल्डर्ड, उसको कहते हैं ससंभ्रमः। और आगे क्या लिखा है? धावत्यैव, श्री कृष्ण जो है बहुत ज्यादा भ्रमित होकर मेरे प्रियतमा का नाम कौन पुकार रहे हैं ये सोचकर उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं जो राधा के नाम का उच्चारण करता है। इसलिए वृंदावन के जो निवासी है वो बड़े चतुर हैं, नाम किसका ले रहे हैं और दौड़ा किसको रहे हैं पीछे से। हाँ, सबसे ज्यादा बुद्धिमानी वृंदावन के निवासियों में होती है, क्योंकि वो ना राधा को छोड़ना चाहते ना कृष्ण को छोड़ना चाहते, दोनों को पकड़ के रखते हैं। दोनों को राधा रानी का नाम उच्चारण कर राधा रानी देखेगी आपको कौन मुझे पुकार रहा है और मेरे प्रियतमा को कौन पुकार रहा है ये सोचकर वो भी देखेंगे, दोनों की नजरों में रहेंगे। जो दोनों की नजरों में रहेंगे उसको किसी की नजर नहीं लग सकती, ना कोई भूत प्रेत पिशाच, ना कोई देवता, ना कोई ग्रह तारा उसको प्रभावित नहीं कर सकता है। इसलिए हम लोग भी क्या कहते हैं, आप ही बोलो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो। अभी अच्छा महीना है ये, आप नियम कर सकते हैं, खाना बना रहे हैं, तड़का दिया घुमाया, राधे किशोरी दया करो, फिर दाल डाल दिया घुमाया, राधे किशोरी दया करो, सुबह उठे राधे किशोरी दया करो, स्नान करने गए राधे किशोरी दया करो, बाहर आ गए राधे किशोरी दया करो, ऐसा आदत लगाएंगे ना तो राधा रानी आपको छोड़ नहीं सकती, दिन रात उनकी कृपा आप पर बरसती रहेगी। और उनकी कृपा यानी कृष्ण की कृपा आपको देना और कृष्ण का बनाना आपको, ये उनकी कृपा है। अगर किसी को कृष्ण का बनना है तो वो राधा रानी के इतना प्रभावी तरीके से और कोई नहीं बना सकता है। बाकी हम कृष्ण को पुकारते रहेंगे, तड़पते रहेंगे, पुकारते रहेंगे, गिड़गिड़ाते रहेंगे, वो बहुत श्रूड लवर हैं। वो क्या कहते हैं, अनन्यश्चिन्तयन्तु माम, 100% कोई किसी का भी ध्यान नहीं करता, 100% शत प्रतिशत केवल मेरा ही ध्यान करता है, तो ही मैं उसे मेरी भक्ति देता हूँ और तो ही मैं उसे अपनाता हूँ, तो ही मैं उसकी देखभाल करता हूँ, योगक्षेम संभालता हूँ। लेकिन उनको पटाते पटाते तो जिंदगियां और जन्म जन्मांतर बीत जाएंगे, इसलिए आसान तरीका बैक डोर का होता है। राधा रानी के पास अप्लीकेशन देंगे, राधा के पीछे कृष्ण स्वयं तेरे द्वार पे दौड़े आएंगे, तू सिमरन कर राधे राधे तेरे कष्ट सभी मिट जाएंगे। राधा के पीछे कृष्ण स्वयं तेरे द्वार पे दौड़े आएंगे, हरे कृष्णा। लेकिन सबके गोद में एक एक जगह है और ले सकते हैं आप। तो हमारा आज का टॉपिक है कृष्ण द बटर थीफ, कृष्ण माखन चोर। इसलिए मैंने पूछा कितने घंटे हैं आपके पास, क्योंकि कृष्ण ने केवल एक बार माखन नहीं चुराया है, मैंने अनंत बार। और लोगों को लगता है केवल माखन ही चुराते हैं, नो, वो दही भी चुराते हैं, वो दूध भी चुराते हैं, वो संदेश भी चुराते हैं, संदेश नहीं तो वो बना हुआ होता है ना छेने का, इसका उसका, बहुत सारे मिठाइयाँ, वो सब कुछ चुराते हैं। और केवल खाने की वस्तु भी नहीं चुराते हैं, और क्या चुराते हैं? हाँ, और उसके पहले भी कोई वस्तु है ना, एक कपड़े भी चुराते हैं। इसलिए वृंदावन में स्नान करने को जाओगे ना जमुना जी में, तो एक गार्ड रखना अपने कपड़े के पास, क्योंकि वहां पर कृष्ण अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं। वो कौन है? बंदर। और आप अपना आराम से जल क्रीड़ा करते रहेंगे, वापस आएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। हरे कृष्णा। तो फिर कपड़े भी चोरी करते हैं, वस्त्र चोरी करते हैं, उसके बाद हृदय की भी चोरी करते हैं। हृदयस्य चौरम गोपांगनाय हृदयस्य चौरम, ऐसे वो मंजले हुए खिलाड़ी हैं चोरी के मामले में। और चश्मा भी चोरी करते हैं। आपको अच्छा अनुभव है वृंदावन धाम का। ये हमारा चश्मा जो हमारी आंखों पे पड़ा है ना, ये बहुत चश्मों को खोने के बाद में विराजमान हुआ है। और हमारे पास अभी एक स्पेयर चश्मा रहता है जो सदैव हम वृंदे पे लेके घूमते हैं। एक बार ना मैं, वो एक जगह है वहां पर नुपुर प्राप्ति स्थली कहते हैं उसको, राधा रानी की नुपुर यानी जो पायल होती ना, वो वहां पर एक बार गुम हुई थी, वहां पर प्राप्त हुई थी। बहुत लंबी कथा है। तो वो नुपुर प्राप्ति स्थली को मैं दर्शन कर रहा था, सब बड़े भाव से यहाँ पर राधा रानी की पायल नुपुर प्राप्त हुई थी, ऐसा प्रार्थना कर रहा था। तो अचानक मुझे धुंधला दिखने लगा एकदम, ऐसा पहले अच्छी तरह दिख रहा था, एकदम धुंधला दिखने लगा। तो बोला क्या हो गया? तो बाद में मुझे बाजू वाले ने बताया, आपके कंधे पर बंदर आके चश्मा निकाल के ले गया, तो ऊपर है। आई डिडंट इवन अंडरस्टैंड, इतना हल्के से वो लैंड हो गया कंधे पे और इतने हल्के से चश्मा निकाल के ले गया, समझा भी नहीं मुझे। केवल नज़र जब धुंधली हो गई तो समझ में आया कि चश्मा नहीं है। तो बहुत कोशिश के बाद में फिर केले वेले, तब तक तो उसने मेरा नहीं, वो ऐसा है ना, वो सब जगह सब कुछ नहीं चलता है, वो एरिया वाइज फिक्स है। कुछ एरिया में जाओ तो आपको केला चलेगा, केला एक्सेप्ट करेंगे। कुछ एरिया में फ्रूटी के बिना नहीं चलेगा। जूस कपड़े वाले दुकान के अंदर फ्रूटी रखे रहते ना उधर शोकेस में, तो समझना ये फ्रूटी का एरिया है। तो किसी एरिया में और कुछ, किसी और कुछ। अभी फाइनली मोबाइल भी चोरी करने लगे हैं। क्यों करते सब चोरी है? मैंने मेरे गुरुदेव से पूछा था, ऐसे एक बार कहा था ऐसे, महाराज अभी या तो ब्रज में ना बहुत आतंक हो गया है, बंदरों का आतंक कितना है, कोई वस्त्र वाले के पास वस्त्र लेके जाओ तो तुरंत वो बाहर आते ही तुम्हारे जो वस्त्र खरीदे वो फाड़ देगा पूरा। दुकानदार भी परेशान है। तो वो सब लोग अपना फ्रूटी अपना एरिया का स्पेशलिटी जो है सर रखते हैं। तो महाराज ने देखो संत लोगों की दृष्टि कैसी होती। हमने एक कंप्लेंट के रूप में उनको बताया, महाराज अभी वृंदावन में रहना बहुत मुश्किल हो गया, यहाँ पर आना ना बहुत मुश्किल हो गया। ऐसे ऊपर से छलांग लगाते, एक बार मैंने मेरी बेटी को लेकर मैं जा रहा था और ऊपर से छतों पे बैठे रहते, वो देखते हैं किसका चश्मा है, क्या है, किसके हाथ में थैली है, किसके थैली में फल है। तो वो वहाँ से ऐसे एरियल जंप लगाते हैं और छून के चले जाते हैं। तो वैसे जंप मारा ना तो मैंने इसको हवा में एक लाफा लगाया तो यहाँ से वहाँ गया हो। तो मेरी बेटी इतनी खुश हो गई, छोटी सी थी मेरी, सबको बताया मेरे पापा ने बंदर को लाफा लगाया। तो मेरी जो कंप्लेंट जैसी बात थी उसको गुरुजी ने क्या बताया उत्तर, दृष्टि अलग होती है संतों की। वो कहते हैं ये सब वृंदावन था, फॉरेस्ट, थिक फॉरेस्ट था, फलों से फूलों से भरा हुआ, जहाँ पर ये बंदर रहा करते थे। अभी हम लोगों ने वो सारे जंगल को काट कर दुकान लोई बाजार, करोड़ों का व्यवहार करने वाला लोई बाजार बना दिया है, तो उनके जगह पर हमने जबरदस्ती एंट्री मारा है और हम लोग ही कंप्लेंट कर रहे हैं। तो वो अपना हक जता रहे हैं कि आपने हमारा सारा जमीन और सारे पेड़ छीन लिए, हम आपको ही छीन लेते हैं। और हम लोग हमेशा कंप्लेंट करते हैं, लेकिन वो उनकी भूमि है जहाँ पर हम लोग जाके बैसे। एनीवेज, तो कृष्ण ने अपना चोरी का करियर कहाँ से शुरू किया बताइए? अरे वो वैकुंठ का सारा जो ऐश्वर्य है ना, वैकुंठ में क्या नहीं है बताओ? लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्य मानव, यहाँ पर एक लक्ष्मी नहीं है, करोड़ों लक्ष्मियाँ हैं। और इतनी करोड़ों लक्ष्मियाँ जो है वो अपने सारे ऐश्वर्य के साथ कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, क्या कमी हो सकती है वहाँ पर? नो स्कैसिटी। वो वैकुंठ का ऐश्वर्य और उपलब्धियां और प्राप्तियां छोड़कर वो पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। क्यों? गोपियों के घर जाकर उनको छाछ और मक्खन और दूध दही चुरा कर खाना है। वो आनंद लेने के लिए वो वैकुंठ का आनंद छोड़ के आते हैं। तो सभी ब्रजवासियों को वो आनंद देने वाले हैं, तो वो क्या सोच रहे हैं, सब ब्रजवासियों को, सब गोपियों को मैं ये चोरी करके खाने का आनंद देने वाला हूँ, तो सबसे पहले मेरे मैया को देना चाहिए। तो इसने अपने करियर की शुरुआत अपने घर से ही की। तभी तो उनको चलने को भी नहीं आ रहा है, अभी कल घुटवन चल रहे हैं। पता है ना घुटवन चलना क्या होता है? हमारी हिंदी भाषा जो है ना बहुत सुंदर, बहुत संस्कृत, हिंदी, मराठी बहुत मधुर भाषा है। इंग्लिश में उसका अनुवाद नहीं कर सकते हैं, इसलिए बेटर वी स्पीक, हमारी हिंदी भाषा ही अच्छी है। तो घुटवन चल रहे, अभी वो ऐसे पकड़ पकड़ के कभी खड़े होते, लेकिन आधिक तौर पर घुटवन ही चलते। तो उन्होंने देखा, अभी उस समय ना भगवान का माखन चोरी का करियर अभी शुरू नहीं हुआ है, इसलिए सारे मटके जमीन पर है। सारे मटके आकाश में कब गए, यानी सीलिंग पे कब चले गए? जब चोरी होने लगी तो बताया, अरे ये तो छोटा सा है, अभी जमीन पर चोरी कर रहा है, उसको लटकाना शुरू करो। तब दोरिया पैदा हो गई, दोरियों का वो अच्छा बनाया गया, उसके अंदर माखन का मटका, दही का मटका रखा गया, और इतना ऊंचा 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 रूफ टॉप पर लटकाया, चालू हो गया। उसके पहले नहीं था ये, सब जमीन पे। और कैसा ब्रज में होता है ना, वो माखन होता है ना, उसके गोले बनाते हैं बहुत, पता नहीं आप लोगों ने कभी खाया है कि नहीं। मैंने बरसाने में वगैरह जब भी प्रसाद पाता हूँ ना, तो ठंड का मौसम में ऐसे 1, 2, 3, 4 ऐसे बड़े बड़े, इतने इतने बड़े बड़े गोले देते हैं माखन के। हम लोग ऐसा एक चम्मच और देखते हैं कितना खा रहा है मेहमान, ज़्यादा क्यों खा रहा है, ऐसा लेते हैं गोले देते हैं खाने के लिए, ऐसे ही खाते हैं उसको। तो ऐसे गोले बनाकर मटके में भर के रखते हैं। तो कृष्ण हमारे बालक जो है ना, घुटवन गए, एक मटका खोला और एक गोला निकाला, वो खाने ही जा रहे थे चुरा के, तो देखा तो कोई और बालक भी खा रहा है। कहाँ देखा? खंभे में देखा, खंभे में रत्न लगे हुए थे, तो वो मिरर जैसा काम कर रहे थे। तो मिरर में उन्होंने क्या देखा, कोई दूसरा लड़का भी माखन का गोला खा रहा है, लेकिन दूसरा कोई नहीं था, उसका प्रतिबिंब था वो, रिफ्लेक्शन। तो कहते, अरे तू कब आया यहाँ पर? तो वो ही पूछ रहा है, तू कब आया यहाँ पर? तो कह रहा है, तूने माखन का गोला चोरी किया है? तो वो भी बोलता, तूने माखन का गोला चोरी किया है? नेचुरली ना वही बोलेगा ना, वो बोलता, मैं मैया को तो तेरा नाम नहीं बताऊंगा, हम दोनों मिलकर खाएंगे। वो भी बोलता है कि मैं मैया को नहीं बताऊंगा, मिलकर खाएंगे। ऐसे बहुत देर तक संभाषण चल रहा है। वो कह रहा है, तू कहाँ से आया? तो बोले, तू कहाँ से आया? और ये सब जो है मैया दरवाजे पे खड़े होकर देख रही है बड़े अच्छी तरह से। बहुत देर संभाषण सुना, बहुत चतुराई की बातें चल रही है, जैसे कि ये इसको समझा रहा है, वो भी इसको समझा रहा है, मैं नहीं बताऊंगा, तू भी बताना नहीं, तू भी शेयर करके खाएंगे। कहते, अरे मूर्ख बालक, तो अपने प्रतिबिंब से बात कर रहा है। तो एकदम गंभीर हो गया कृष्ण, बोलते, मैया मुझे एक बहुत बड़ी समस्या है, आज मेरे जीवन में बहुत बड़ी समस्या आई है। तो मैया कहती है, अरे समस्या तो बड़ों को होती है, छोटों को कोई समस्या होती है क्या? आपको कोई समस्या है क्या? ऐसे खाली एग्जाम के दिन थोड़ी होती है, लेकिन बाकी दिन में तो मैया बाबा को ही समस्या होती है उनके लिए। तो मैया कहते, नहीं नहीं, तो बड़े लोगों को ही समस्या होती है। नहीं नहीं मैया, मुझे आपके अपने घर के विषय में बड़ी समस्या है। क्यों, क्या समस्या है? मैया आपको पता नहीं है, आपके घर में, हमारे घर में एक चोर आया है, अभी जरा माखन के गोले संभाल के रखना। थोड़ा एक चापट लगाते हैं, कहते, अरे तो तू ही तो है वो, कोई चोर नहीं हमारे घर में। ये हो गया चोरी की, क्या कहते हैं उसको, शुभारंभ हो गया। करियर शुरू हो गया। अभी एक बार आपको मैं दही की चोरी बताता हूँ। हाँ, दही की चोरी। अभी सब लोग है ना, गोपियाँ क्या करते हैं ना, अपने घर में दही मंथन जो भी करते हैं ना, वो ये सोच के करते हैं कि आज मेरे घर पे आएगा, प्रार्थना करते रहते हैं। उनके दृष्टि से भगवान कौन है? विष्णु। वो विष्णु को प्रार्थना करते रहते हैं कि आज लाला जो है हमारे घर पे चोरी करने आ जाए। उसके भाव से सब मक्खन दही सब बनाते हैं। तो एक दिन एक गोपी के घर में सब झुंड आता है बालकों का। तो गोपी ना ऐसे चौकी पर बैठी है, ये तो कुर्सी है ना, चौकी यानी वो बेत का होता है ना, वो उस पर बैठी हुई है। कहते, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आज आपको कोई ढूंढना और चोरी वोरी करना नहीं पड़ेगा, ऑफिशियली मैं आपको आज लाइसेंस दे रही हूँ, आज आप ढूंढो, खाली एक ही कंडीशन है, मेरे घर पर जाओ और ढूंढो, और जहाँ मिलेगा वहाँ खा लो। तो सब ग्वाल बाल, कृष्ण, बलराम सब आकाश में देखते हैं, क्यों आज सूरज पश्चिम में तो नहीं होगा? हाउ दे आर सेइंग लाइक दिस, तो एक ही शब्द जाओ, अपने आप ढूंढना है और लेना है। सब लोग तुरंत अंदर गए, सब ढूंढ रहे हैं, सब अंधेरे कमरे में, लाइट वाले कमरे में, सब जगह जाके ढूंढ रहे हैं, कहीं भी नहीं मिल रहा है। तो वापस उसके बाद आते हैं, वैसे पाँव ऊपर करके वो चौकी पे बैठी है। तो अभी आपको पता नहीं होगा शायद, या होगा, ब्रज में जो मक्खन, दूध, दही, छाछ जो भी होता है ना, उसको कमल की खुशबू आती है। उसको क्या कहते हैं? पद्मगंधा। क्योंकि गाय जो है ना वो घास भी खाती है जिसको कमल की खुशबू आती है, और ऐसी घास गोवर्धन के जमीन पर आती है। वहाँ पर एक गैया को, गैयाओं को चुराती चराती है मैया, और फिर वो गाय जब दूध देती है तो उसको कमल की खुशबू आती है। उसको उबालते हैं और गाढ़ी खुशबू आती है। उसको वो जामुन लगाते हैं और गाढ़ी, और मक्खन निकालते हैं तो एकदम कॉन्सेंट्रेट कमल गंध की आती है। तो वैसे उस दही को भी कमल की खुशबू थी। जैसे लोग वो गोपी के पास में आते थे ना, तो वो ज़्यादा गंध आती थी। समझ में आपको आया? मुझे यहाँ पर अगरबत्ती लगाया है तो यहाँ पर ज़्यादा गंध आएगी, अब किचन में जाएंगे तो कम आएगी, फिर यहाँ से किचन से यहाँ पर आएंगे तो फिर लगेगा हाँ यहाँ पर अगरबत्ती लगाइए। वैसे गोपी के पास आए तो उनको ज़्यादा खुशबू आती थी। तो दो तीन बार अप डाउन करने के बाद कृष्ण को समझ में आया, अरे मक्खन तो इसके नीचे ही है, क्योंकि उसने वो दही का जो मटका था वो चौकी के नीचे रखा था, चौकी उसके ऊपर रखी थी, उसको बैठ के बोल रहे जाओ जाओ सब खाओ खाओ। तो कृष्ण को समझ में आया, चालक ही कर रहे गोपी, आसानी से नहीं देना चाहती है। तो कृष्ण ने सभी कुछ अपने ग्वाल बालों को ऐसा आंखों से इशारा किया, जाओ इनके गौशाला में जाकर बछड़ों को छोड़ दो। पता है ना, नए नए बछड़े को तो अलग रखते हैं, तो क्या सारा टैंक खाली हो जाएगा, आप लेने जाएंगे टैंक खाली मिलेगा, इसलिए उनको दूर रखते हैं और सुबह और शाम ही उनको दूध पीने देते हैं। हमारे संस्कृति में नियम है, जब नया बच्चा होता है ना गाय का, दो थन बालक के, दो थन आपके, दो महीना चलेगा ये, मतलब धर्म से, हाँ ऐसे चालक चालाकी से नहीं, नो चीटिंग, दो थन बालक के, दो थन हमारे, और तीन महीने के बाद में फिर तीन थन हमारे एक बालक का, ताकि उसको कभी नहीं होनी चाहिए, बालक का मुंह का छीन के हमको दूध नहीं लाना है। तो उस प्रकार से इनको पता चलता है तो वो इशारा करते हैं और बछड़ों को छोड़ देते हैं। बछड़े हे हरि बोल, जब जाके पूरा मैया को लगते हैं, सारे मैया का सारा दूध खाली कर देते हैं। उतने में ये कृष्ण यहाँ चिल्लाते हैं, अरे जाओ जाओ जाओ, देखो तो बछड़े छोड़ दिए, बछड़े छोड़ दिए। तो वो भागती है वहां से और बछड़ों को पकड़ पकड़ जितना कोशिश करे, तब तक सारे थन खाली, बछड़े आराम से लौट के आ रहे हैं, अभी भूख भी नहीं लग रही है। अभी क्या करेंगे, भाग के गए तो फायदा क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, तब तक तो सब पी लिया उन्होंने। और जैसे ही वो गई, इन्होंने उखल को उल्टा किया, चौकी को लिया मटका, और अच्छी तरह से दोनों हाथ से सबको, बंदर को, दोस्तों को, सबको खिला रहे हैं। तो वो लौट के आती है, तब तक मटका भी खाली दही का। तो कृष्ण क्या कहते हैं पता है आपको, चालाकी नहीं की होती ना तो कम से कम दूध बचता, चालाकी की ना दूध भी गया और दही भी गया, अगली बार चालाकी मत करना। ऐसे एक बार ना दूध के घड़े भरे हुए थे, तो वो दूध के घड़े भरे हुए, तो छुप छुप के कृष्ण बलराम आए, ग्वाल बाल आए, उन्होंने घटाघट घटाघट दूध पीना शुरू कर दिया। किसी को ऐसे आ करके ऊपर से पिला रहे हैं, किसी को खुद पी रहे हैं, किसी खड़े हो रहे हैं, ऐसे सब लोग एकदम अलग अलग तरीके से दूध पी रहे हैं। उतने में गोपी आ जाती है, वो देखती है कि हमारे दूध की चोरी हो रही है, तो वो जोर से डंडा लेकर जाती है उनको पकड़ने के लिए। तो आप समझो अभी आप दूध पी रहे हो और किसी ने आपको देख लिया और आप चोरी करके पी रहे हो, तो आप क्या करेंगे, गटागट पी के भागने का कोशिश करोगे, जितना हो सके उतना पी के फिर भागो। तो क्या करते हैं, जब भागने का समय आता है तो घटाघट तो गल्प करना मुश्किल है ना, तो वो जितना हो सके उतना पीते हैं और फिर गाल में भरते हैं गुलचा, तब तक वो गोपी आ जाती है। तो उनको क्या लगता है गोपी को, कि मुझे देखकर सब भाग जाएंगे, क्या उम्मीद है आपको, चोर आपको देखेंगे तो आपको देख के भाग जाएंगे ना। तो यही कृष्ण और बलराम और क्या करते हैं, वो गोपी के पास में आने लगते हैं। तो गोपी को बड़ा आश्चर्य लगता है, अरे मैं तो पकड़ने जा रहा हूँ, मेरे पास से क्यों आ रहे हैं। कोई बात नहीं, पकड़ना आसान हो जाएगा। तो पास में आते हैं और उसको देखते हैं और उसके मुंह में पिचकारी मारते हैं। वो देखकर सारे ग्वाल बाल, बाकी गोपियां जो आ रही है पकड़ने के लिए, सबके मुंह पे पिचकारी मारते हैं। इसको कहते हैं गुलचा, हाँ अपने गुलचे से सबको पिचकारी मारते हैं, सबको आंखों में दूध जाता है, वो आंख मलती है, सब सब ग्वाल बाल भाग जाते हैं कृष्ण बलराम। तो गोपी ने एक सुंदर, ये सूरदास जी का पद है, उसमें गोपी ने एक सुंदर वाक्य कहा है एंड में। वो कहते हैं जब तुम हमारे दूध को चुरा कर पी रहे थे, तो इतने सुंदर लग रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे, मुझे लग रहा नहीं था कि आपको जाके पकड़ूं, लेकिन पकड़ना भी तो हमारा काम है ना, इसलिए हम पकड़ने आए और आपने हमारे मुंह में गुलचा मारकर भाग गए। आप तो भाग गए, लेकिन जो आपकी छवि गुलचा मारते हुए मेरे हृदय में बसी हुई है, वो तो वहाँ से भाग नहीं सकती। ऐसा सूरदास जी ने लिखा है, भाव लिखा है गोपियों का। तो अभी फिर दीपावली का दिन आया, तब तक तो हमारे चोर की ख्याति जो है ना, चोर की जो कीर्ति है, वो सब जगह फैली हुई थी। सब लोग आकर कंप्लेंट कर रहे हैं हर दिन, सब बड़ी बड़ी गोपियाँ, छोटी गोपियाँ, समवयस्क गोपियाँ सब आके कंप्लेंट कर रही है। और वो कंप्लेंट की ना एक विशेषता है, समझो अभी मैं वहाँ से आया, ये आपका घर है ना, समझो मैं आपको, आपको मुझे कंप्लेंट करना है आपके बेटे के बारे में कि वो चोरी करता है, मक्खन करता है, ऐसे करता है, तो मैं वैसे आऊँगा और कंप्लेंट करने लगूँगा, तो आपकी उम्मीद क्या है कि मैं आपको देख के कंप्लेंट करूँगा ना, व्हाट यू एक्सपेक्ट। आपको कंप्लेंट करें तो बोले जानते हो आपका बालक इतना ये है वो है, वो चोरी करता है हमारा, ये चोरी करता है। लेकिन ये मैया क्या करते हैं, ये मैया अनेक मैया है जो आती है, वो अंदर देख रही है और इनको कंप्लेंट कर रही है। कारण क्या है उसका, अरे कंप्लेंट का तो बहाना है, देखना है उसको। अभी वो घर से आके मक्खन चोरी करके गया है तो दिल नहीं रह रहा है कि मैं उनको देखना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ, तो देखने के लिए घर आती है। लेकिन बहाना चाहिए ना, घर पे क्यों आए, तो कंप्लेंट का बहाना लेके आते, बोले रोज आता है और हमारा दही दूध चुराता है। तो मैया कहती थी उसको अच्छी तरह रखो ना, नहीं कहाँ रखे साथ जब जगह ढूंढता है, तो लटका के रखो ना, तो लटका के भी रख रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, कभी किसी के कंधे पर चढ़ते हैं, कभी किसके पीठ पे चढ़ते हैं, कभी उखल पे चढ़ते हैं, और दो तीन स्तर करके चढ़ते हैं और फिर चुराते हैं। तो फिर अंधेरे में रखा करो ना, हाँ हमने अंधेरे में रखना भी शुरू कर दिया है, लेकिन पता नहीं उनके शरीर से क्या रोशनी आती है। तो कहते हाँ मैं उनको बहुत सारे रत्न पहनाती हूँ ना, बहुत अलंकार पहनाती हूँ, उसका प्रकाश है। तो ले हमने भी देखा कि वो प्रकाश जो है ना, वो रत्नों से नहीं आता है, इसके शरीर से ही आता है। तो अंधेरे कमरे में जब जाते हैं तो उनका शरीर का ही लाइट इतना होता है कि सब दिखाई पड़ता है, उनको हमने कहा लटका के रखा है। और कहते हैं कि ये जो जब आता है और चोरी करता है तो कभी कभी नहीं मिलता है ना, हर समय थोड़ी चोरी करने के लिए तुरंत सामान मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है, तो परेशान होकर हमारे पलने में सोते हुए छोटे छोटे बालकों को चिमटा निकालता है और जगाता है। कभी कभी हमारे सोते हुए नन्हे बालकों के कान में पानी डालता है और बच्चा रोता है तो हमको पता चलता है कि यह आके शरारत कर रहा है। कभी कभी क्या कहें आपको, लेकिन कहना तो मुझे पड़ेगा ही। कभी कभी ये दूध मक्खन नहीं मिलता है तो हमारे घर में आके लघु शंका करके चला जाता है। आगे का भी बहुत सारा करता है लेकिन मैं वही बता रहा हूँ, ऐसे त्रस्त करने के लिए, परेशान करने के लिए। ये सारी कंप्लेंट मैया को हो रही है और मैया को ना बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है। वो तो कहते हैं कि मैं तो, मेरे पास 100 स्पेशली ब्रेड यानी अलगता से उनकी पैदाइश करके मैंने पद्मगंधा गायों को बनाया है, उनका मैं दूध निकालती हूँ, उनका मैं दही जमाती हूँ, उनका दूध का दही का मैं मक्खन बनाती हूँ और उसको गले तक खिलाकर मैं खिलाती हूँ, भेजती हूँ, ताकि ये किसी के घर में मांगे नहीं, चोरी नहीं करे। या बालक पता है ना, आपके घर में खाएंगे वो जाके मैया थोड़ा इडली दो ना, मेरे मैया ने आज बटाटा वड़ा बनाया था, मुझे इडली खाने का दिल है, तो वहाँ जाके इडली खाएगा, वहाँ जाके चने खाएगा, वहाँ जाके डोसा खाएगा। तो कोई मांगना नहीं चाहिए, इतना गले तक भर के मैं उसको भेजती हूँ। तो उनको विश्वास ही नहीं हो रहा है, ये सब गोपियाँ सच कह रहे हैं, सब उसको विश्वास नहीं हो रहा है। तो क्या कहेगी वो अभी, अब गोपियाँ तो कहते जा रहे हैं, एक नहीं 50 बातें बता रही हैं कन्विंसिंगली, और मैया का विश्वास नहीं हो रहा है। तो मैया की बात कह रही है, कभी रंगे हाथ पकड़ के ले आओ तो मैं मानूं कि उसके हाथ में भी मक्खन है, उसके मुंह में भी मक्खन है, और आप उसको पकड़ के ले आ रही हो कि मेरे घर से मैं ऐसे ले आ रही हूँ तो मैं मानूं। तो एक गोपी है नंद बाबा के बड़े भैया की पत्नी, उसका नाम है प्रभावती। तो वो सोचती अभी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कितनी बार मैया के पास जाके ताने सुनना है कि तुम लोग मेरे बच्चे के खिलाफ हो, तुम लोग मेरे बच्चे के खिलाफ हो, बार बार कंप्लेन करते हो। तो एक बार सोचते कि नाम को भी अच्छी तरह से कोई योजना बनाते हैं और उसको पकड़ लेते हैं, रंगे हाथ पकड़ते हैं। अभी रंगे हाथ पकड़ना बहुत कठिन होता है चोर को। अभी वो अपने शोले पे डाला डायलॉग, जिंदा चाहिए मुझे गब्बर। मार के तो बहुत ला सकते हैं लेकिन जिंदा कौन ला सकता है। तो ऐसे ये चोर को रंगे हाथ लाना बहुत मुश्किल है। तो वो एक बार ऐसा एक कमरा होता है, वो सारे दरवाजे बंद करते हैं, एक ही कमरा खुला रखते हैं और सारे मटके जो है ना नीचे करते हैं और मटके को ना घंटी लगाते हैं और सारी घंटियाँ। अब ये ब्रज की बात है, आपको पता होगा शायद ब्रज में हर वस्तु सजीव है, हर वस्तु बोलती है, संवाद करती है हमसे। तो घंटी भी बोलती है क्योंकि सब सब जो जीव और वस्तुएं हैं ब्रज में वो चिंतामणि हैं, यानी सजीव है। वो सब सेवा करने के लिए वो जीव, कोई घंटी बनता है, कोई कुछ बनता है, कोई कुछ बनता है। तो गोपियाँ घंटी से बात करें, देखो आपकी मर्यादा है, जब कन्हैया कुछ भोग लेते हैं ना, कुछ भोग आरोगते हैं तो आपको बजना है, ये नियम है ना, तो आज आपको बजना है। जब वो आएंगे और खाएंगे आपको जोर से बजना है। आपकी आवाज़ सुन के हम आएंगे, सारे दरवाजे बंद होंगे, एक ही दरवाजा खुला होगा, वहाँ से हम सब लोग अटैक करेंगे, यहाँ से भागने का रास्ता नहीं हुआ, हम सबको पकड़ लेंगे। और वो भी जानते हैं कि पकड़ने के लिए भी बहुत ना सोच समझदार से काम करना पड़ता है। समझो अभी आप इतनी सारी औरतें हैं, है ना, और 50 बच्चे हैं समझो, और आपको सबको पकड़ना है, लेकिन आपको आपको पता नहीं किसको पकड़ना है, तो आप इसको पकड़ो कि उसको पकड़ो, इस समय सब बच्चे भाग जाएंगे। यू अंडरस्टैंड, आपके पास एक टारगेट नहीं है, आपको बच्चों को पकड़ना है, लेकिन एक बच्चा छूट गया तो वाल उस दूसरे को पकड़ेंगे, वो भी छूट गया दूसरे को पकड़ेंगे। तो सब गोपियाँ तय करती हैं तुझे किसे पकड़ना है, तुझे किसे पकड़ना है, और किसी को देखना ही नहीं, आपको खाली उसको ही पकड़ना है बस। इस तरह सब लोगों को डिवाइड कर लेते हैं, फिर अटैक करेंगे, आपको केवल उसी को देखना है, उसको पकड़ना है और सबको लेके जाएंगे। कन्हैया को किसी मजबूत गोपी को देते हैं कि तुम पकड़ना है उसको। तो सब ग्वाल बाल सब पहले ये सब करते हैं और सब छुप जाते हैं झाड़ियों में, इधर उधर कोई है नहीं वहाँ पर। कुछ देर के बाद देखते 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 कृष्ण बलराम अपने सवंगड़ियों को सबको लेके आते हैं और देखते हैं, अरे सब मटके नीचे, वैसे हाथ की पहुँच पे, कोई उखल की जरूरत नहीं, कोई पीठ की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है। बोले अच्छा है, चलो खा लो। तो दूसरा बाल बाल कहते हैं, अरे कन्हैया देखो घंटी लगी हुई है, कोई षड्यंत्र लगता है। बोले हाँ घंटी लगी हुई है, अगर हम खाएंगे तो मटका हिलेगा, फिर घंटी बजेगी, फिर शायद कोई पकड़ने को आ सकता है। तो कृष्ण भी, अब ये गोपी अगर घंटी से बात करे तो कृष्ण बात नहीं कर सकते क्या? तो कृष्ण भी घंटी से बात कर रहे हैं। बोले देख घंटी, तो मेरी सेविका है ना, मैं तुम्हारी सेविका हूँ, हमारा विश्व आपका सेविका है, आपका सेवक है। तो फिर सेविका का कर्तव्य क्या है? स्वामी की बात मानना। मैं आपका स्वामी हूँ, आप मेरे सेविका है, तो मेरे बात मानना आपका कर्तव्य है कि नहीं? हाँ बिल्कुल स्वामी जी, आपका ही राज्य है सब, आप जो कहो जो हुक्म करो। तो कहती है, आप रोज मैं खाता हूँ तब बजती हो, आज आपको नहीं बजना है। हाँ स्वामी आपकी जैसे आज्ञा है, एक बार नहीं बजा तो क्या फर्क पड़ता है, रोज तो बजते ही हैं। तो ठीक है, अभी कृष्ण भगवान सरदार अपने सब सरदारों को कहते हैं, चलो अभी अटैक शुरू करो। तो सब लोग अपने अपने मटकों पर टूट जाते हैं, सब लोग खाना शुरू करते हैं। और कृष्ण भगवान जो है ना, वो देखते हैं कि सारे मेरे ग्वाल बाल खा रहे हैं, और तो अभी मैं खा सकता हूँ। अभी वो जैसे ही गए और मटके को तोड़ के खाने लगे, एक होल बना के ना, तो ना देखो क्या हुआ, मैं बताता हूँ आपको। आप इमेजिन करो, हाँ वो जो है ना मटका, उसके अंदर दही और मक्खन दोनों हैं। कभी कभी होता है ना ऐसे ही, थोड़ा थोड़ा सा ऊपर तैरता रहता है, नीचे थोड़ा सा दही भी रहता है, थोड़ा सा पतला भी होता है। तो ये नीचे से फोड़ते हैं ना तो धार लगती है। अभी तोड़ते हुए जो मटका हिलता है ना, तो मटका ऐसा हिल रहा है और धार भी ऐसे ऐसे हिल रही है। तो कृष्ण जो है ना, वो ऐसे आगे पीछे आगे पीछे जा रहे हैं, ऐसे ऐसे जा रहे हैं। तो वो देख कर वो घंटी को इतना आनंद आया, तो घंटी बहुत आनंद विभोर हो गई। बोले ऐसा अभिषेक भी हो रहा है कृष्ण का, कृष्ण आरोग भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, उसे डांस भी कर रहे हैं, आगे पीछे भी हो रहे हैं, और इतने इतने सुंदरता से उसको ग्रहण कर रहे हैं। तो घंटी भाव विभोर हो गई और भूल गई कि मुझे नहीं बजना है, और जोर जोर से बजने लगी। जैसे घंटी बजने लगी, सारी गोपियां भाग भाग के आई, सारी गोपियां भाग भाग के आई, और सबका तो फिक्स था ना, मैच फिक्सिंग था पहले, किसको पकड़ना है। तो सबको पकड़ के कृष्ण को भी रंगे हाथ, उसके सर पे भी है सारा जो धार लगी हुई, सर पे भी है, मुंह पे भी है, मुंह के अंदर भी है, हाथ में है, सब जगह, मतलब परफेक्ट। आपको कैसे चाहिए वैसे सब कुछ परफेक्ट है। तो वो प्रभावती आके उनको पकड़ लेती है, प्रभावित को आप देखो ना, जो किसी के हाथ में अब तक नहीं आया है वो आज मेरे हाथ आया है। मैंने 500 बार यशोदा मैया की गाली खाई है, ताने खाए हैं कि तुम सब लोग मेरे बालक के पीछे हो, कभी रंगे हाथ तो पकड़ो। आज मैं यशोदा दीदी को जाके साबित करूंगी तुम्हारा लाला कितना बड़ा चोर है। और अभी वो वहां से निकल रही है, लेफ्ट राइट करके एक हाथ में पकड़ा है कन्हैया को और जा रही है। अभी दो पार्टी है उसके अंदर, बालकों में दो पार्टी है और गोपियों की दो पार्टी है। जिनके घर में माखन चुराते हैं और जिनको मैया ताने देती है वो नाराज है ना ऑलरेडी, और जिनके घर में आके खाते हैं और वो खिलाते हैं वो भी प्रसन्न है, गोपियां प्रसन्न है, वो भी प्रसन्न है। तो एक वर्ग है जो नाखुश है कृष्ण के ऊपर, वो आज बड़े खुश है कि चोर को पकड़ा, और वो सब तालियां पीट के हंस रहे रस्ते में दो तरफा खड़े हैं। और ग्वाल वाले दो ग्रुप क्यों ने, क्योंकि ये जो चोरी करते हैं तो कुछ लोग जो ना भागने में सफल हो जाते हैं और कुछ लोग पकड़े जाते हैं और पीटे जाते हैं। तो पीटे जाते हो कहते हैं अरे तुम चोरी करते हो मार हम खाते हैं, तो आज वो बड़े खुश है कि सरदार को पकड़ा है हम लोग फ्री है। तो रस्ते में वो खड़े हैं ताली पीटने वाले ग्वाल बाल, ताली पीटने वाले गोपियां, और ये रेफ राइट करके जा रही है। प्रभावती इतनी खुश है आज मैं बताऊंगी। तो कृष्ण कहते हैं देखो गोपी ना बड़ा हाथ है तेरा। हाँ माता जी आपका हाथ दिखाइए जरा, हाथ दिखाइए ऐसा उसका, आपका हाथ हाथ पकड़ो दिखाओ ऐसा हाथ, तो कितना छोटा हाथ है उसका। अभी आप उसको पकड़ोगे तो ऐसा इतना बड़ा हाथ, इतने छोटे हाथ को भी इतना कोमल हाथ को ऐसा पकड़ा है टाइटली। कहते गोपी कितना कस के पकड़ा है, समझो अभी आपको मैं ऐसा हाथ पकड़ लिया जोर से बहुत देर तक, फिर क्या होगा बताओ? वो तो पहले तो स्वेलिंग हो जाएगा ना पूरा, ऐसा पहले तो लाल होगा उसके बाद में स्वेल हो जाएगा, बाद में फिर नीला पड़ेगा, वो तो आगे की बात है। तो देखो मेरा हाथ कितना सूज गया, देखो कितना खून इकट्ठा हो गया है, इतना कस के कोई पकड़ता है क्या? मैं कहाँ भाग रहा हूँ, इतना बड़ा हाथ निकाल के कहाँ भागूंगा मैं? तो फिर वो बोला ठीक है सही बात है, लेकिन मैं छोड़ूंगी नहीं आपको, तो आप बहुत चालाक हो छोड़ जाओगे। तो फिर चल रही है, नहीं छोड़ रही है। फिर कृष्ण ने कहा देखो ये सब गोपियां जो है ना वाल वालों को ताली बजा के हंस रहे हैं, मुझे बड़ा संकोच हो रहा है, बहुत लज्जा आ रही है, इतना बड़ा पल्लू लेके जा रही हो, वो पल्लू मेरे पर डाल दूँ ना तो ना मैं उनको देख ना मुझे देखें, तो मैं छुप के चला जाऊँ। तो ठीक है ये बात तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक हाथ पकड़ा हुआ है दूसरे हाथ से पल्लू डालते हैं उसके ऊपर ऐसे, तो उस पर पल्लू आ गया अभी। हाँ और वो पल्लू डालने के पहले उसने कृष्ण ने उस गोपी प्रभावती गोपी के बालक को इशारा कर दिया ऑलरेडी, और उसको भी पल्लू के अंदर ले लिया इतना क्विकली है ना आप बोल रहे हैं उसके अंदर, उसने पल्लू डालने के समय पे ही वो अंदर घुस गया उसके। फिर वो कह रहा है अरे गोपी कितनी देर से कह रहा हूँ मेरा हाथ में दर्द हो रहा है, मैं कहाँ भागे जा रहा हूँ, थोड़ा हाथ तो बदली करो, राइट हैंड से लेफ्ट में पकड़ो ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं कहाँ छोड़ रहा हूँ कि छोड़ दो मुझे, मैं बोल रहा हूँ राइट हैंड थोड़ा सा रिलीज हो जाएगा तो लेफ्ट हैंड पकड़ो ना मेरा आप। तो लेफ्ट हैंड पकड़ते, लेफ्ट हैंड राइट हैंड छोड़कर लेफ्ट हैंड पकड़ना है, उतने में वो कृष्ण उस बालक का हाथ उसके हाथ में दे देते। समझता भी नहीं है, बिकॉज़ शी इज इन एक्साइटमेंट ना, टोटल एक्साइटमेंट, मैंने कृष्ण को पकड़ा है, तो वो इतना ध्यान नहीं दे रहे, बोले थक करके हाथ छोड़ते तो दूसरा हाथ उसके हाथ में आता है, तो ठीक है दूसरा हाथ पकड़ लिया। कृष्ण नीचे बैठ जाते हैं, गोपी ऊंची है ना कृष्ण छोटे हैं, नीचे बैठ जाते हैं और सारे लोग लेफ्ट राइट करके, हाथ में बालक है उसमें पल्लू रखा हुआ है, सब बालक जो है वो सब गोपियां चलती रहती है, कृष्ण नीचे बैठते हैं, सब जुलूस जो आगे जाता है ना, तो बैठा हुआ कृष्ण खड़ा होता है और भाग के अपने घर जाता है, भाग के जाता है। अभी ये गोपी तो थोड़ी बड़ी शरीर की है, थोड़ी सी बुजुर्ग भी है, चल रही है अपना फास्ट, लेकिन बालक की स्पीड के आगे क्या होता है, बालक बहुत जल्दी घर पहुंच जाता है। मैया भूख लग रही है, भैया आ जा मेरे लाला आ जा, गोद में लेती है दूध पिलाती है, बोले मैया थोड़ा सा मक्खन भी खिला दो, मक्खन भी खिलाते हैं, मैया थोड़ा संदेश भी खिला दो, संदेश भी खिलाते हैं, तो पेट भर गया, बस बस अभी बहुत नींद आ रही है, और जाके सो जाता है। उनको पता है सब क्या हो रहा है, वो सोने जाता है मतलब अपने नाटक में, और सोने का नाटक करता है, तो उतने में गोपी आती है चिल्ला, अरे यशोदा दीदी सुन रही हो तुम, सुन रही हो सुन रही हो? तो ये शोर हल्ला देख कर यशोदा कहती है क्या हो रहा है? तो ये तो एक गोपी नहीं बड़ा झुंड आ रहा है, सब लोग अच्छे भी खुशी से आ रहा है एकदम, और पल्लू लटका के नीचे भी कोई है। बोले सुना तुमने यशोदा, तुमने कहा था ना रंगे हाथ ले आओ, आज तुम्हारे लाला को रंगे हाथ लाई हो, तुम्हारे लाला का गुणगान देख करूंगी आज, तुम देखो कैसे है, हाथ में भी मक्खन है, मुंह में भी मक्खन है, सब जगह मक्खन है, सर पे भी मक्खन है, सब जगह मक्खन ही मक्खन है। यशोदा कहते अरे वाह अच्छा तुमने स्क्रिप्ट बनाया है, क्योंकि उसको तो पता है ना, वो अंदर आके कभी सा खा के पी के बिस्तर पे सो रहा है, और ये इतनी आत्मविश्वास के साथ कह रही है कि तुम्हारे लाला को रंगे हाथ पकड़ी हूँ। अच्छा दिखाओ तो सही मेरा लाला कहाँ है। तो ऐसा पूरा उसको आगे करती है पल्लू निकाल के, ये तो उसका ही बालक उसके हाथ में। Hey, how you came here? मुझे अभी भी याद है हमारे गोपाल गार्डन के बच्चों ने ड्रामा किया था ना, दैट गर्ल सेड सो ब्यूटिफुली, हे व्हाट आर यू डूइंग हियर, ये क्या आ गए यहाँ पर, कैसे आ गए, एक तमाचा देती उसको, तू कहाँ से आ गया। और वहां से कृष्ण आते, मैया कौन शोर कर रहा है। तो मैया देखती है पीछे, ये भी देखता है, हंसते हैं सब लोग, हंसते हैं। वो प्रभावती बहुत परेशान है, बोले ये कैसे हो गया, इतना षड्यंत्र रचा के, इतना पकड़ के उसको ले आई। तो चल चल यहाँ से, क्या सब छड़ झुका के सब चले जाते हैं। कुछ देर के बाद में पीछे से कृष्ण आते हैं, कहते हैं मैंने बीच में रास्ते में कहा था गोपी मुझे छोड़ देना, तू छोड़ दो मुझे, बहुत पछताओगे तुम, बहुत पछताओगे, मतलब कुछ नहीं पछताएंगे, मैंने कहा था आपको कि आप बहुत पछताओगे, आपने नहीं माना। देखा ना, अभी तुम्हारे हाथ में तुम्हारे बालक का हाथ है, अगली बार करोगे तुम्हारे हाथ में तुम्हारे पति का हाथ होगा। तो इसी लीला के बहुत सारी लीलाएं हैं। एक बार तो वो हाथ में ही है, वो छोड़ती नहीं है, लेकिन जब दिखाने का समय आता है ना, तो कृष्ण रूप बदल लेते हैं और उसका बालक बन जाते हैं। और फिर वो ले जाती है आगे जाकर, तो वही कृष्ण जो है बालक बना हुआ कृष्ण बन जाते हैं। ऐसे भी भाई कई बार हुआ है। तभी इतना सब हो गया ना, इतना कंप्लेंट हो गया ऐसा भी, फिर भी बाकी गोपियां तो झूठी साबित हुई ना, कृष्ण तो पीछे खड़े हैं और आगे कोई है नहीं। तो फिर वो यशोदा ने सोचा कि अभी ना मैं अपने हाथ से ही मंथन करूंगी, हो सकता है मेरी सहेलियां मेरी दासियां कुछ कर रही हैं तो फिर कुछ उसमें कमी रहती होगी। अब मैं मेरे हाथ से पद्मगंधा गायों का लगाया हुआ जामन लगाया हुआ दही को मंथन करूंगी और मेरे हाथ से बालक को खिलाऊंगी टेस्ट करके, ताकि बेस्ट ऑफ बेस्ट मेरे बालक को मिले। दीपावली का दिन था, वैसे भी सारी सेविकाएं सब महोत्सव डेकोरेशन सब तैयारी करने में बिजी थी। तो कृष्ण ने सोचा कि मैं खुद ही बनाती हूँ, लगाई लग गई। कृष्ण सोए हुए हैं दीपावली के दिन। आप बोलेंगे दीपावली का दिन तो पहले से ही दीपावली कहते हैं उसको, क्यों कहते हैं दीपावली पता है आपको? दीपावली कृष्ण के जन्म से पहले ही मनाई जा रही है। क्यों? क्योंकि त्रेता युग में प्रभु रामचंद्र जब अयोध्या आए थे लौट कर, सीता जी को वापस लेके रावण को मारकर जब लौटे, तो उस दिन सभी लोगों ने अयोध्या में दीप प्रज्वलित करके राम जी का स्वागत किया था, इसलिए वो दीपावली कहते हैं। वो अश्विन शुद्ध चतुर्दशी का दिन है, नहीं पूर्णिमा अमावस्या का दिन है, सॉरी अश्विन अमावस्या। तो उस दिन सब लोग बिजी हैं, उत्सव है। मैया और कृष्ण थोड़े देर से उठे, देखा मैया कहाँ है, तो वह मंथन कर रही है, तो पीछे गए और पल्लू खींचा उसका, इंडिकेट किया कि मुझे आपका स्तनपान करना है। तो मैया ने मंथन रोक दिया और स्तनपान करना शुरू कर दिया। उसमें मैया को कुछ दूध जलने की बदबू आई। क्यों? क्योंकि उन्होंने चूल्हे पर भी कुछ दूध रखा है, पद्मगंधा दूध, जिससे कोई मक्खा मिठाई बनाई जाएगी, और वो अगर उबल कर अग्नि में उतर रहा है तो वेस्ट हो जाएगा। तो झट से बालक को रखा, मतलब अभी एक मिनट में आती हूँ, और भागे किचन के अंदर उसको संभालने में, ताकि वो बचे। मैं तो हूँ ही, कभी भी पिला सकती हूँ, लेकिन वो अगर गिरेगा तो बेकार हो जाएगा। लेकिन कृष्ण को लगा कि जब मैं स्तन पान कर रहा हूँ तो विश्व में उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम और कोई नहीं हो सकता। वो दूध क्या चीज़ है, 1000 लीटर दूध ऐसा आ सकता है, लेकिन मेरी इच्छा का क्या? मुझे माता ने स्तन से अलग करके नीचे रख के माता वो चूल्हे का दूध को बचाने गई। क्रोध आया, मैं मैया को सबक सिखाऊंगा। तो मथनी जी था ना, वो मटके में छोड़ के गई थी, उल्टा बालक को कही कह के भी गई थी, मैं अब भी आ रही हूँ, जरा आप देखना इसको कोई बंदर आके गिराए नहीं। तो बंदर आने की जरूरत क्या है? उसने वो रवि निकाला मथनी, और एक दे मारा मटके के ऊपर, इतना बड़ा मटका। हम लोग का मटका कितना होता है? 2 लीटर का। ब्रज का मटका कितना होता है? आज भी 200 लीटर का, आज भी 300 लीटर का। आप खड़े होंगे ना, तो खड़े पे ऐसा मंथन कर सकते हैं, बैठने की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा मटका तोड़ा, तो इतना उसमें ऑलरेडी कुछ बना बना छाछ था, बना बना मक्खन था, वो सारा फैल गया। तो कुछ खाया पहले, फिर डर लगा, अरे मैंने तो इतना बड़ा मटका तोड़ा, मैया आएगी तो दंड देगी, तो फिर भागने लगे। अभी भागने लगे तो सारी जमीन में छास फैला हुआ है ना, तो छास में से ही भागे, छास जहाँ एंड हो गया उसके आगे भागे तो जहाँ पर छास लगा हुआ है पैर में वो भी आगे लगेगा ना जमीन पे, तो छास के पैरों के निशान, और वहाँ से अगले कमरे में गए छुपने के लिए। वहाँ पर देखा कि एक मटका लटका हुआ है, वहाँ पर एक उखल रखी हुई है, तो देखते हैं अरे अच्छा माहौल है, यहाँ पर अंधेरा है, कोई मैया भी नहीं आएगी। तुरंत वो उखल लिया, उस पर खड़े हो गए और मक्खन के मटके को उतारा और सबको आवाज़ दिया, बंदरों को, दोस्तों को, आ जाओ सुदामा, अर्जुन, वसुदामा, सब लोग आ जाओ, आ जाओ। सब लोग आ गए और दरवाजे से जहाँ से अंदर से गए ना वहाँ पर उनकी पीठ है, और सारे ऐसे बैठे हुए हैं जैसे मैं बैठा हूँ, मेरी दरवाजे को पीठ है, तो आप सब आगे बैठे हैं, तो सबको खिला रहे हैं, वो बंदर भी आके खा रहे हैं सब लोग, इतना सारा बड़ा मटका ना, तो सब लोग पेट भर के खा रहे हैं। तो मैया आती है, देख सब रख के आती है, देखती है तो अरे इतना बड़ा मटका टूटा हुआ, इतना सारा कीमती छास फैला हुआ, इतना मक्खन फैला हुआ, और बालक कहीं भी नहीं है, और जो रवि मंथनी उसके अंदर थी वो जमीन पे पड़ी हुई है। तो सब समझ में आया क्या हो गया। फिर बाला बालक जो है ना, मैंने अब तक सोचा था कि ये चोरी नहीं करता है, लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया कि यही चोर है। और अगर जिस सत्य को मैं असत्य मानती थी, जो आज मुझे वापस पता चल रहा है कि ये सत्य है, तो कितनी गंभीर बात है। मेरा बालक राजा का पुत्र है, नंदलाल महाराज का पुत्र है, उसकी हमारी इतनी बदनामी हो रही है कि ये चोर है सारे ब्रज में, लेकिन मुझे विश्वास नहीं था, आज मुझे विश्वास हुआ। तो आज मुझे दंड देना बहुत ज़रूरी है, अगर दंड नहीं दूंगी तो मेरे बालक को कौन शिष्टाचार सिखाएगा, हु विल टीच माई चाइल्ड। दंड हाथ में लेती है और ढूंढे ढूंढे चले जाती है, और वो बड़े होशियार है, पता है ना कि वो जहाँ पर छाछ फैला हुआ है उसके आगे छाछ के चरण चिन्ह हैं छोटे छोटे, तो उसको ही सहारे आगे चले जाती है। तो आगे कमरे में जाती है, दरवाजे पर खड़ी है, जैसे दरवाजे पर कमरे पहुँचती है ना, तो जो सामने चेहरा करके बैठे हैं ऐसे बंदर देखते हैं उनको, जो पीछे ना मैया को देखते हैं, तो वो सब भाग जाते हैं तुरंत। जैसे वो भागते समझ में आता कि पीछे मैया आ गई है, तो ये भी भागने लगते हैं। तो मैया अभी उसके डंडा लेकर उसके पीछे भाग रही है, रुक जा रुक जा रुक जा बेटा रुक जा रुक जा। तो ये पूरा महल में भगाया माँ को, सब कमरे में भाग रहा है, इधर से उधर, इधर से उधर। अभी आचार्य वर्णन करते हैं कि यशोदा दीदी बड़े उम्र की थी ना, बहुत बुजुर्ग उम्र में बालक जन्म हुआ था, तो बड़े बड़े शरीर के हिस्से उनके, वो उतना जोर से नहीं भाग रही है, बालक छोटा सा है, भाग रहा है सब जगह पे, रुक जा रुक जा रुक जा, वो भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है। सब देवता लोग देख रहे हैं, अरे जिस परब्रह्म को पाने के लिए ऋषि मुनि हजारों लाखों साल तपस्या करते हैं लेकिन प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसको सामने देखकर मैया उसके पीछे भाग रही, कितना बढ़िया सीन है देखो। तो योगियों को, तपियों को, ध्यानियों को, तपस्वियों को, किसको, वैराग्यों को नहीं मिल रहे हैं, मैया उसके पीछे डंडा लेके भाग रहे, सोचो आप। फिर वो पीछे देख रहे हैं, वो आगे देख रहे हैं, पीछे देख रहे हैं, तो देख रहे हैं कि मैया भी थक गई है। तो बालक को लगता है कि अरे मैया को बहुत कष्ट दिया, चलो पकड़े जाते हैं। तो बालक को पकड़ लेती है और डंडा दिखाती, तो बालक है ना, कौन है बालक, वो परम भगवान श्री कृष्ण है, परम भगवान ईश्वर, परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, पूरी दुनिया उनके इशारे पे नाचती है, पत्ता पत्ता भी उनके इशारे के बिना हिल नहीं सकता है, वो भगवान है। वो अभी कांप रहे हैं डंडे को देखकर, मैया वो डंडा नीचे रखो, डंडा मुझे बड़ा डर लग रहा है। तो मैं लगता है कि उसको सिखाना तो है मुझे, लेकिन डरा के सिखाना नहीं, डर के तो अच्छा नहीं होगा सर। डंडा तुरंत फेंक देती है, दे तूने बहुत बड़ी शरारत की है, आज मुझे पता चला तू कितना बड़ा चोर है। चलो वो उखल ने तुम्हें इस चोरी में सहायता की है, तुम दोनों मिलकर ये षड्यंत्र किया है, चोरी का गुनाह किया है, तो मैं तुम दोनों को बांध देती हूँ। और सब पहले बालों का जो रस्सी बांधते ना बालों को, वो निकाला, कोशिश किया, नहीं हुआ, तो सखियों को आवाज़ दिया, जाओ गौशाला से दोरी लेके आओ। दोरी कौन सी होती है गौशाला में, जो पीछे के दो पैर को बांधते हैं ना गाय को दूध निकालने के पहले, नहीं तो वो क्या करते हैं, पिंग एक लात देती है दूध निकालने वाले को, इसलिए सबसे पहले पीछे के दो पैर जो है उसको बांध देते हैं। छोटी सी दोरी होती है, वही दोरी है ना, सब दोरियाँ लेके आए, सबको ज्वाइन कर करके जितना कोशिश की, पेट के ऊपर से घुमाया, जब गांठ मारने का समय आया तो दो उंगली छोटी। ओ सखियो और दोरी लेके आओ, सब दोरी लेके आए, अपना गौशाला खाली कर दिया, और इतना सा पेट, रोज तो उसको कपड़े पहनते हैं ना, रोज कपड़े पहनते हैं, वो दोरी लगाते हैं, नाड़ी बांधते हैं, क्या क्या पहनते हैं, धोती पहनते हैं, लेकिन कभी तो इतना कष्ट नहीं आया। आज इतनी बार घुमाया तो एंड में दो उंगली छोटी। तो गोपियों ने कहा, गोपियों को कहा, जाओ तुम्हारे गौशाला से दोरी लेके आओ। तो सारे लोगों ने अपने अपने गौशाला से डोरी लेके आए, और कुछ गोपियां कह रही अरे मत बांधो मैया मत बांधो, कुछ गोपियां कह रही बांधो उसको बांधो बांधो। मैंने कहा ना दो ग्रुप होते हैं ना, तो फिर ऐसे कहते हैं उस दिन डोरियों का उत्सव हुआ, दाम उत्सव। जितनी ब्रज में डोरियां थी वो सब इकट्ठा होके वहां पर आई, और सारों को जोड़ के भी पेट को नहीं बांध सके। सब लोग अचंभित हो, मैया भी अचंभित हो गई, घुमा घुमा के घुमा घुमा के उसके कपाल पर जो ना पसीने के बिंदु आए, उसको कहते हैं स्वेद बिंदु जमा हो गए, ड्रॉप्स ऑफ स्वेट कलेक्टेड ऑन हर फोरहेड। कृष्ण ने देखा वो तो झूठ झूठ की सिसकियां भर रहे हैं, मैया मत बांधो मुझे मत बांधो, लेकिन देखा मैया बहुत परिश्रम कर रही है, सोचा ठीक है अभी बंदे जाते हैं। तो क्या बताते हैं हमारे आचार्य, वो दो उंगली छोटी किसकी है, एक है हमारा प्रयास और दूसरी है कृपा भगवान की। प्रयास तो हम करते हैं लेकिन कृपा के बिना कार्य सफल नहीं होता है, तो एक उंगली प्रयास की है एक उंगली कृपा की है। हम लोग बहुत प्रयास करेंगे जब तक कृपा नहीं होती तब तक नहीं हो सकता है। मैया ने बहुत प्रयास किया लेकिन जब तक भगवान की इच्छा नहीं हुई नहीं बांध सकी उसको। कौन उनको बांध सकता है, जो दुनिया को तीन गुणों के अंदर बांध के रखते हैं उनको कौन बांध सकता है। इच्छा होगी तो फिर बंध गए, बोले फिर बहुत शरारत करते हो, आज मुझे यकीन हुआ कि तुम वास्तव में चोर हो, अभी मुझे बहुत सारे काम है, दीपावली का उत्सव है, यहां पड़े रहो कहीं जाना नहीं। सब बालक आते मैया मैया आप सब लोग चले जाओ, कट आउट फ्रॉम हियर, आप सब लोग मिलजुल के ये सब षड्यंत्र करते हो, आप ही तो आए थे ना खाने के लिए, अभी अभी बोले छोड़ो छोड़ो सब चले जाओ यहां से, मुझे बहुत सारे काम है, ऐसा करके छोड़ के चले जाती है। अभी इतनी बड़ी उखल को बांध के रखा है, मैया अंदर चली जाती है, चलेगा बालक कैसे हिलेगा। अभी बालक ना जैसे जाते हैं ना, ये एक मिनट वेट वेट फॉर सम टाइम, थोड़ा ही बाकी समय। तो बालक पहले सिसकियां भर के रोने का नाटक कर रहे हैं, जैसे मैया जाती है तब मैया को सबक सिखाऊंगा, और उखल को लेकर घुटवन चलते 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 आंगन में आते हैं। आंगन में चलते चलते सीढ़ियाँ उतरते हैं, सीढ़ियाँ उतर के अपने आंगन के बाहर, आंगन जो वन है उसमें चले जाते हैं, और वन में चले जाते हैं तो उनकी उखल जो है ना वो दो पेड़ों के बीच में अटकती है। इतना सा बालक इतनी बड़ी उखल खींचता है तो दोनों पेड़ धड़ाम से गिर जाते हैं, और दो पेड़ों में से दो देवता प्रकट हो जाते हैं। वो कुबेर के पुत्र हैं, नल कुबेर और मणिग्रीव। उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया था राम नारद मुनि का, वो शराब में पीकर सब अप्सराओं के साथ मंदाकिनी नदी में नग्न होकर विहार कर रहे हैं, नारद मुनि आते फिर भी उनको सलाम नहीं कर रहे हैं, दंडवत नहीं कर रहे हैं, अपमान करते हैं उनका। तो कहते तुम इतना मदमस्त हो, इतने बेशर्म हो, कपड़े उतार कर भी आपको होश नहीं है, जाओ पेड़ बन जाओ। तो वो पेड़ बन गए। ये बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ है बाय द वे। जो लोग पुरुष या स्त्री अपने शरीर का प्रदर्शन करते हैं, अधिक से अधिक करते हैं, प्रयास करते हैं कम से कम कपड़े पहने, अधिक शरीर दिखाएं, उन सब लोगों को वुड बनना पड़ता है। हॉलीवुड टॉलीवुड बॉलीवुड लॉलीवुड लॉडीवुड फाइनली बिकम वुड, यानी पेड़, क्योंकि पेड़ कोई वस्त्र नहीं पहनता है, हजारों लाखों जो साल तक नंगे शरीर से खड़ा रहना पड़ता है, धूप में बर्फ में सर्दी में, श्राप दिया तो पेड़ बन गए, फिर बहुत दुखी हो गए, अरे माफ़ करो हमें माफ़ करो, तो बोला ठीक है पश्चाताप हो रहा है। अभी 28वें द्वापर में जब कृष्ण जन्म लेंगे तो आप उनके आंगन में, आपके ही जहाँ है वहाँ पर उनका आंगन होगा, और आप सब उनकी बाल लीला देखोगे, उनके द्वारा आपका उद्धार होगा। तो कृष्ण भगवान इसी लीला में उनका उद्धार करते हैं। इसमें एक बड़ी समझने की बात है, कृष्ण को उन देवताओं पर कोई प्रेम नहीं था लेकिन नारद मुनि पर बड़ा प्रेम था उनका। तो मेरे परम भक्त नारद मुनि ने इनको वादा किया है कि कृष्ण आपका उद्धार करेंगे, इसलिए मेरा उद्धार करने का फर्ज है, मेरे भक्त की बात जो है उसको जताना है मुझे, इसलिए उनको गिरा दिया। फिर उन्हें बहुत बड़े गीत गाए, अभी वो गीत का उसमें वर्णन भी है, इसमें आप गाएंगे ना, उसमें उनका वर्णन है कैसे वो गिरे क्या क्या हुआ। तो बाद में धड़ाम करके जब आवाज हो गई तो अंदर से मैया और गोपियां, बाहर से खेत से नंद बाबा और ग्वाल बाल आए। पहले नंद बाबा पहुंचे, तुरंत बालक को अलग किया, गांठ से छोड़ के अलग कर दिया। किसने किया ये? मैया ने किया। क्यों किया ऐसे? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मैया ने बांध के देखो क्या हालत और बना दिया, मैं अभी मैया के पास नहीं जाऊंगा। बोले अरे मैया के पास नहीं जाओगे तो दूध कौन पिलाएगा? तू बाबा गैया का दूध पिलाएगा मुझे निकाल के। तो स्नान कौन कराएगा? तू बाबा। कपड़े कौन पहनाएगा? तू बाबा। खेलने का कौन लेके जाएगा? तू बाबा। मतलब मैया जो जो करती है वो सब उसने उच्चारण किया। बालक ने जवाब दिया ये सब तेरे साथ मैं करूँगा, बाबा के साथ। और तब तक मैया भी आके खड़ी है वहाँ पर और मैया की ओर देख भी नहीं रहा है वो, और मैया सब सुन रही है दूध कौन पिलाएगा, तू पिलाएगा सब कुछ। तो मैया सोच रही है कि मेरे जीवन की सारी सेवाएं समाप्त हो गई, अभी जीवन में क्या अर्थ बचा है, मैं मर जाना ही अच्छा है। ये सोचकर मैया बेहोश हो गई। तो बाबा ने कहा देखो लाला मैया बेहोश हो गई है, आपने सब मना कर दिया उनके लिए। तो घूम के देखता है तो वास्तव में मैया बेहोश पड़ी है। जाके मैया करके जाके उसको गले लगाया, उसका स्पर्श होते ही मैया जग उठी, बहुत चुंबन किया, बहुत प्रेम किया। इस तरह से ये दामोदर लीला संपन्न हुई। हरे कृष्णा। बोलो श्री दामोदर भगवान की। यही कथा 2-2.5 घंटे में भी कही जा सकती है, हर एक चीज़ का अर्थ बताते हुए। लेकिन कोई बात नहीं, कभी और समय आएगा तो आपको इस लीला का सब सार भी समझाएंगे। विशेष बात यह है कि हम सब लोगों को इन दामोदर भगवान पर ध्यान करना है, जो किसी से बंधते नहीं है लेकिन मैया के प्रेम से बंध गए हैं, और मैया उनको दंड दे रही है। बाकी दुनिया को दंड देते हैं लेकिन मैया उनको दंड दे रही है। ऐसे प्रेम का ये लीला है, इस पर प्रेम की लीला पर हम ध्यान करते हैं और इस महीने में दीप दान करते हैं। आप सब लोगों को माता जी ने बताया होगा दीप दान का महत्व, कैसे मैंने बताया नहीं। तो इस दामोदर को हम हर दिन सुबह शाम दीप दान करते हैं और क्या कहते हैं, हमें प्रेमा भक्ति दो। जिस प्रेमा भक्ति के रस्सी से आप बंधे हो उस रस्सी से हम वंदन करते हैं, आपको वंदन करते हैं, आपके पेट को भी वंदन करते हैं, जो सारे सृष्टि का उगम है। आप हमें प्रेमा भक्ति दे दो। तथा प्रेम भक्ति सकामे प्रयच्छ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सारे मेरे सामने तुच्छ है, आपका प्रेम हमें चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम।